देवियों सज्जनों, आप सबको नमस्ते। जो हमने संस्कारों की सीरीज जो चल रही थी 16 संस्कारों की, उसमें जो लास्ट संस्कार है वो है अंत्येष्टि संस्कार, जिसको आप कह सकते हैं द लास्ट राइट। हमने पहले ये डिस्कस किया बिफोर बर्थ ऑफ ए चाइल्ड देर आर 3 डिफरेंट सेरेमनीज, गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार एंड सिमंतोनयन संस्कार। आफ्टर द बर्थ ऑफ चाइल्ड टिल ही और शी बिकम्स 3 ईयर ओल्ड, तो बाकी और 6 संस्कार जो सेरेमनीज हैं उनमें जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, मुंडन एंड कर्णभेद। बच्चा जब 7-8 ईयर्स ओल्ड हो गया जाता है तो देन एजुकेशनल जो बाकी जो संस्कार होते हैं सेरेमनीज, दीज आर रिलेटेड टू एजुकेशन। द फर्स्ट वन इज उपनयन संस्कार, देन वेदारंभ एंड समावर्तन इज ग्रेजुएशन, द सेरेमनी ऑफ ग्रेजुएशन कंप्लीटिंग द एजुकेशन। Then comes the संस्कारा जब different life stages। पहला था गृहस्थ संस्कार, जिसमें विवाह संस्कार, जिसमें आदमी व्यक्ति हाउस होल्ड लाइफ में एंटर करता है। जब उसके बच्चे रेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, अपनी चीजों को इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अपनी चीजों को खुद कर सकते हैं, तो फिर माँ बाप रिटायर्ड लाइफ लेते हैं। रिटायर्ड नॉट फ्रॉम लाइफ और प्रोफेशन और वर्क, फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी जिसे रिटायर्ड लेते हैं और अपने आप को सोशियल कम्युनल सर्विस में इन्वॉल्व करते हैं, ईश्वर भक्ति अपनी लाइफ में बढ़ाते हैं और अपने आप को प्रिपेयर करते हैं टू लीव ए रिनाउंस्ड लाइफ, संन्यास जीवन को जीने के लिए। द लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ संन्यास आश्रम, जहां मेंटली हर किसी चीज को गिव अप कर देते, रिनाउंस कर देते हैं, लाइफ में किसी भी चीज की जरूरत को न केवल मिनिमाइज करते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं, किसी भी चीज की जरूरत की फीलिंग ना हो। और जब मेंटली स्टेज पर हम प्रैक्टिस करते हैं तो ग्रेजुअली वी आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग आवर सेल्फ टू गो टूवर्ड्स द डेथ, क्योंकि डेथ तो सटन है, सबके पास आता है। तो जब डेथ आता है उसको भी प्रॉपर वे में सेलिब्रेशन करने का नाम है अंत्येष्टि संस्कार। तो इस जो सेलिब्रेशन है सेरेमनी, इसका नाम अंत्येष्टि क्यों है? वैसे इसके बहुत सारे नाम है, अंतिम संस्कार मतलब लास्ट राइट कह सकते हैं, नरमेध, मेध कहते हैं यज्ञ को, ऐसा यज्ञ जहां इंसान की बलि चढ़ती है, पुरुष याग, ऐसा यज्ञ याग मतलब यज्ञ भी है, जहां पुरुष या ह्यूमन बीइंग को सीधे आहुति दी जाती है। सो अंत्येष्टि जो वर्ड है उसका लिटरेरी मीनिंग यही है, द लास्ट यज्ञ, क्योंकि हर सेलिब्रेशन लाइफ का यज्ञ से ही होता है। हमने डिस्कस किया क्यों यज्ञ करते थे। तो जो लास्ट यज्ञ लाइफ का होगा मेरे मरने के बाद मेरे परिवार द्वारा, उसमें मेरा जो शरीर है वही आहुति के रूप में यूज होगा, जैसे घी और सामग्री डालते हैं। इसीलिए जो क्रिमेशन होता है भारत में, जहां खुले में पहले तो वही परिपाटी थी, छोटी की जगह बड़ी बड़ी लकड़ियां रखी जाती थी, बॉडी को, डेड बॉडी को रखा जाता था, पूरी प्रक्रिया से, हवन प्रक्रिया से, जो भी अंत्येष्टि संस्कार की विधि है उसी प्रक्रिया से घी, स्वामी जी लिखते हैं, अगर आप पैसे वाले हैं मतलब आपके पास है पैसा तो आप बॉडी जितना है उतने वजन के घी, उसके दुगने वजन के सामग्री यूज करिए, जिससे कि वायुमंडल में शुद्धता रहे, बॉडी को जलने के कारण जो जो गंदगी गंदा स्मेल या जो गंदगियां है उससे बचे, और पूरे रिस्पेक्ट के साथ उसको आप डिस्पोज करें। देवियों सज्जनों, मरना तो सर्टन है, इसमें किसी को कोई डाउट तो होता नहीं है। पैदा होंगे नहीं होंगे आप डाउट कर सकते हैं, पर मरना सर्टन है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर ये पक्का है तो व्यक्ति उसको अपने दिमाग में बना के रखे कि लाइफ एक सिर्फ टेम्परेरी पीरियड के लिए है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं हमें तो जाना पड़ेगा। जैसे कि ये गीता का बहुत ही क्लियर डिक्लेरेशन है, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, फॉर वन हु हैज टेकन बर्थ डेथ इज सर्टन, एंड फॉर वन हु हैज डेड बर्थ इज सर्टन, सो देयरफॉर इन एन इनेविटेबल सिचुएशन यू शुड नॉट लेमेंट। लेमेंटेशन तो जो ग्रीफ है, शोक है, उसका कारण ये नहीं है कि कोई मरता है, इसका ये कारण नहीं है। दुख है हमारा जो अटैचमेंट है, रोज लाखों लोग मरते हैं, हर के लिए हम थोड़े ही रोते हैं, जिसके साथ हमारी अटैचमेंट है। और जरूरी नहीं कि इंसान मरने पर दुख होता है, जिस जिस में आपकी अटैचमेंट है अब उसमें दुख होगा। आप गाड़ी से बहुत प्यार करते हैं, अपनी गाड़ी से, कार से, तो कार को कुछ प्रॉब्लम हो तो भी आप दुखी मिलेंगे, है ना। आप अपने एक पर्टिकुलर ड्रेस से बहुत अटैच्ड हैं, तो उस ड्रेस को कुछ भी खराब हो जाए तो आप दुखी होंगे। दुखी सिर्फ हम इंसान मरने पर नहीं होते, जहां भी हमारा अटैचमेंट है, अफेक्शन है, दैट इज द कॉज ऑफ ग्रीफ। मरना इज नॉट कॉज ऑफ ग्रीफ, अटैचमेंट जो है वो ग्रीफ शोक का कारण है। ये क्लियर होना जरूरी है, है ना। तो इसीलिए कृष्ण कहते हैं जो इनेविटेबल है, मेंटली प्रिपेयर रहो। तो जब आप मेंटली प्रिपेयर रहते हो, रेडी रहते हो, कभी भी जा सकते हैं, कोई भी जा सकता है, या तो मैं पहले या तुम पहले, कोई भी पहले जा सकता है, तो फिर आपको इतना ज्यादा शॉक या ग्रीफ नहीं होगा। हमें क्यों दुख होता है जब हम सडनली किसी चीज को फेस करते हैं? द प्रॉब्लम इज इन दिस नेचर नथिंग इज सडन, सब अपने टाइम के अनुसार होता है। सडन हम तब कहते हैं जब मैं उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं था, या मैंने अपने आप को सोचा नहीं था, एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा होगा, अब होगा। मरना तो पूछ के नहीं आएगा, तो तुम प्रिपेयर नहीं हो, तुम्हारा दोष है। मैं सोच के चलता हूं, नहीं मैं तो 100 साल में मरूंगा, कहां किसने आपको ये बॉन्ड लिख करके साइन किया है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। तुम अगर सोचते हो, डू फॉर योर बेस्ट बट बी रेडी फॉर द वर्स्ट, लाइफ तो ऐसा ही है। तो इसीलिए कृष्ण कहते हैं अपने आप को ये इनेबिटेबिलिटी को एक्सेप्ट करना सीखो। पर प्रॉब्लम है कि हम ठीक उसका उल्टा बिहेव करते हैं। अल्दो हम सब जानते हैं, इवन इलिटरेट पर्सन भी जानता है कि मरना पक्का है, उसके बावजूद भी द वे वी बिहेव, द वे वी शो आवर एटीट्यूड, वो ऐसा लगता है कि मानो हम बिल्कुल ब्रह्मा से अब अमर होने का वर लेकर आए हैं। और इसीलिए हमारे लाइफ में इतने कन्फ्लिक्ट होता है, हम अपने माइंड को इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, हम खुद के लाइफ को इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं कि साथ में रहने वाला स्पाउस भी नहीं समझ पाता है कि आदमी चाहता क्या है। क्योंकि हम खुद ही अपने बारे में कंफ्यूज्ड होते हैं। बच्चे तो वैसे ही नहीं जानते, क्योंकि उनकी अपनी दुनिया है, वो खुद को जान जाए बड़ी बात है। करते कुछ हैं, चाहते कुछ हैं, फिर हिपोक्रेसी बहुत पैदा होती है। महाभारत में वो एक इंसिडेंट है, कभी मौका मिले पढ़िए, बहुत सुंदर इंसिडेंट है। तो उसमें वन पर्व या अरण्य पर्व के नाम से वो एक चैप्टर है। तो उसमें युधिष्ठिर और यक्ष, तो यक्ष एक कैरेक्टर है, दोनों के बीच में डायलॉग होता है। यक्ष क्वेश्चन पूछता है और युधिष्ठिर आंसर देते हैं, क्योंकि यक्ष वाज द ओनर ऑफ ए पॉन्ड, वो एक पानी का रिजर्वर का हेड ओनर था। इनको प्यास लग रहा था पर वो पानी देने को राजी नहीं था। उसका कंडीशन था कि मेरे बहुत सारे क्वेश्चन से जो आंसर देगा मैं उसको दूंगा। तो युधिष्ठिर के साथ उसी प्रसंग में, उस स्टोरी में क्वेश्चन आंसर से होता है। तो उसमें एक ये क्वेश्चन आया, उसमें सैकड़ों क्वेश्चन है, मौका मिले तो जरूर पढ़िए, गूगल में भी सर्च करके देख सकते हैं, यक्ष युधिष्ठिर संवाद। बहुत उसमें कोई स्पिरिचुअलिटी बा बहुत हेवी फिलोसॉफिकल बात नहीं, बिल्कुल डे टू डे लाइफ की बहुत छोटी छोटी टिट बिट्स की क्वेश्चन आंसर है। उसमें हो सकता है कुछ आंसर में आप एग्री करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बट इट इंटरेस्टिंग टू नो। तो वो पूछता है, बताओ दुनिया में सबसे बड़ी आश्चर्य की, कमाल की बात क्या है? व्हाट इज द मोस्ट ऑफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड? तो युधिष्ठिर कहते हैं, अहन्यहनि भूतानि प्रविशन्ति यमालयम् शेषास्थावरम् इच्छन्ति किमाश्चर्यमत परम्। एवरी डे एंड एवरीवन सीज काउंटलेस लिविंग एंटिटीज आर डाइंग एंड स्टिल द मैन एक्ट्स एंड थिंग्स एज ही इफ ही विल लिव फॉर एवर। इफ देयर एनी अदर वंडर देन दैट? हर इंसान सुनता है, देखता है, जानता है, रोज हजारों में नहीं लाखों में लोग मरते हैं, तब भी जिंदा आदमी सोचता है मेरा नंबर अभी नहीं आने वाला। कहां से उनको ये पता है कि नहीं आने वाला? हमने देखा है बड़े बड़ी बड़ी बातें करने वाले साधु बाबा लोग स्टेज पर बोलते हैं। एक एग्जाम्पल देता हूं, बड़े क्लेम करने वाले एक साधु रियल, मैं 150-200 साल तक नहीं मरने वाला हूं, मैंने तपस्या की है, वो की है, लंबा प्रवचन दिया, बड़े बड़े सारे क्लेम किया, स्टेज से उतरते ही पैर फिसल गया, गिर गए, सर में चोट लगा, मेडिकल में गए, डन फिनिश्ड। तो इसीलिए दावा करने से पहले 10 बार सोचना, भगवान कुछ और विचार तो नहीं कर रहा है। ये स्टोरी आप सब जानते हैं, ये पिक्चर में आप देखते हैं महात्मा बुद्ध हैं और वहां एक लेडी बैठ के रो रही है। पर क्योंकि ऑकेजन बहुत बार सुनाया, पर ऑकेजन है तो दोबारा सुना लेते हैं। तो महात्मा बुद्ध किसी गांव में प्रवचन कर रहे थे, तो पड़ोस के गांव में कोई महिला जिसका एक ही बेटा था और कोई लाइफ में उनके फैमिली में और कोई नहीं था, और जवान बेटा वो उसका डेथ हो गया, तो शी वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट कि मेरा इतना जवान बच्चा कैसे जा सकता है। होता है ना, बहुत लोग इतने शॉक में आते हैं, कभी कभी आप न्यूज वगैरह में देखते होंगे इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी न्यूज, पति या पत्नी मर चुका है, महीनों हो गया, पर वो उसको क्रिमेशन करने को राजी नहीं है, दरवाजा बंद करके रखा है क्योंकि वापस आएगा। तो वैसे ही वो राजी नहीं है क्रिमेशन करने की, बिल्कुल शॉक्ड है, इधर उधर घूम रहा है, मेरे बेटे को कोई बचा लो, बचा लो। तो उसने सुना पास के गांव में महात्मा बुद्ध आए हुए हैं, बड़े ऊंचे पहुंचे हुए साधु हैं, तो वो दौड़े दौड़े गई और प्रवचन के बाद उनके चरणों में गिर गई, भीख मांगने लगी कि मुझे बचाओ, मेरे बेटे को बचा लो, तुम तो महात्मा हो, साधु हो, सब जानते हो, सब कर सकते हो, कर लो प्लीज। बुद्ध मुस्कुराए, बोले ठीक है करूंगा, क्योंकि वहां अगर ना करते तो रास्ता भी नहीं था, ले करूंगा, तुम्हारे बच्चे को मैं जिंदा कर लूंगा, पर मुझे उसके लिए एक मुट्ठी सरसों की जरूरत है। सरसों से मस्टर्ड सीड है, सरसों। तो बोले ठीक है मैं अभी लाती हूं। दौड़े गई तो बुद्ध ने पीछे से बोला, सुनो ऐसे घर से लाना जिस घर में कोई मरा ना हो, मेक श्योर किसी के घर में कोई मरा ना हो। पर उस समय कहां होश रहता है, आदमी जब स्ट्रेस में हो तो दिमाग कम चलता है। माता जी बोली ठीक है, दौड़े दौड़े गई गांव में, हर घर में घुसी, सरसों मांगा, जैसे ही कोई सरसों देने आए पूछा, तुम्हारे घर में कभी कोई मरा तो नहीं? मरा नहीं क्वेश्चन तो ठीक है, कभी नहीं मरा पूछना तो, ये कभी तो बड़ा अंडरलाइनिंग फैक्टर है ना। बोले नहीं, ये मरा है वो मरा है। सुबह से शाम तक घूमता रहा, उसको सरप्राइजिंगली पता चला कि किसी के घर में तो बच्चा प्रेगनेंसी में भी मरा है, एक साल का बच्चा भी मरा है, पांच साल का भी मरा है, दस का भी मरा है, बीस का भी गया है, पचास का भी गया है, सौ का भी गया है, सौ से ऊपर का भी गया है। कोई लिमिटेशन नहीं है किस एज में किसको जाना है, ऐसा कोई घर नहीं जहां कोई पर्टिकुलर एज में भी कोई गया हो। जा गया तो सभी है, पर बियॉन्ड द कैलकुलेशन ऑफ एज। मां ढूंढते ढूंढते शाम को वापस आई और बुद्ध को गुस्से में बोला, आपने ऐसा क्या कंडीशन रखा, ये तो हो ही नहीं सकता, किसी के घर में कोई बचा ही नहीं, सब मरे। बुद्ध फिर मुस्कुराकर बोले, फिर अगर सबके घर में सभी मरे हैं, कोई वापस नहीं आया, तो तुम क्यों चाहती हो कि तुम्हारा बेटा आए जो हो ही नहीं सकता? तो तुम्हारे लिए एक ही रास्ता है, जस्ट एक्सेप्ट दिस, योर सन इज नो मोर, देयर इज नो अदर वे टू गेट रीड ऑफ दिस पेन और सफरिंग। कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई मिरेकल, कोई चमत्कार नहीं हो सकता, एक ही रास्ता है, एक्सेप्ट द ट्रूथ एंड ट्राई टू लिव विद दैट ट्रूथ। तो देवियों सज्जनों, ये सत्य है। अब आते हैं थोड़ा अंत्येष्टि संस्कार की प्रक्रिया पर, फिर आगे दूसरे टॉपिक पर जाएंगे। जब व्यक्ति मरता है, अभी हमने सुना, उसको रेस्पेक्टफुली उसका क्रिमेशन करने की जरूरत है, डिस्पोज करने की। दुनिया में जितने भी लोग हैं, सब जगह मरने के बाद बॉडी को डिस्पोज करने का अंत्येष्टि संस्कार, लास्ट राइट करने के अलग अलग तरीके हैं, पर जो सब में एक कॉमन है कि बॉडी को तो डिस्पोज करना ही पड़ेगा। हमारे यहां यह माना जाता है कि ये जो शरीर है ये फाइव बेसिक एलिमेंट से बना है, अर्थ, वाटर, फायर, ईथर एक्सेट्रा। अर्थ का मतलब अर्थ प्लैनेट नहीं, सॉलिड थिंग्स, जो मैटर है, ये पांच तरीके से आपको मिलता है। मैटर का एक फॉर्म होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड, दूसरा फॉर्म होता है गैस, तीसरा होता है एनर्जी, चौथा होता है एनर्जी, पांचवा होता है ईथर, स्पेस, वैक्यूम। और इंसान की बॉडी को उन पांचों में से किसी चार के द्वारा ही डिस्पोज किया जा सकता है। जो लोग जमीन के नीचे गाड़ते हैं ग्रेवयार्ड करके, वो मिट्टी में समाने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग पानी में बहा देते हैं। वो पारसी जरास्त्रियन कल्चर में एक खंबे के ऊपर रखते हैं बॉडी को, और वहां उसको वो चिड़िया वगैरह काफी दिन तक रहता है, चिड़िया वगैरह खाते हैं, तो उसको वो जो खुले में रखते हैं वो एयर से रिलेटेड है, और हम लोग जलाते हैं वो फायर से रिलेटेड है। तो अलग अलग लोग अपने अपने तरीके से बॉडी को डिस्पोज करते हैं, पर वैदिक ट्रेडिशन में या जो मॉडर्न हिंदू ट्रेडिशन में, अच्छा, जो अलग अलग तरीके से डिस्पोज करते हैं उसके पीछे पूरी फिलॉसफी है। हर एक का अपना फिलॉसफी है, अंडरस्टैंडिंग है, लाइफ क्या है, लाइफ क्या है इससे कनेक्ट होता है कि आपकी फ्यूनरल सर्विस में आप क्या करते हो। हिंदू ट्रेडिशन में, वैदिक ट्रेडिशन में मरने का मतलब द डेड बॉडी इज नाउ द स्लॉग ऑफ ए वुड। अब ये तुम्हारा फादर ना पापा है, ना मम्मी है, ना भाई है, ना चाचा है, ये तुम्हारे भाई का, चाचा का, रिश्तेदार का, पापा का, मम्मी का शरीर है। कल तक तो आप बोलते थे ना, ये मेरा पापा है, ये मेरी मम्मी है, ये मेरा चाचा है, ये मेरी चाची है। आज क्या बोलते हैं? ये मम्मी का डेड बॉडी है, ये पापा का डेड बॉडी है, बॉडी है। असली सत्य तब बोलते हैं जब कोई मरता है, तब आप कहते हैं ये बॉडी है, मेरे पापा अलग है। जैसे गीता में आपने पढ़ा कि बॉडी को कपड़े की तरह होता है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि। जैसे आप बाजार में कपड़े खरीदते हैं ना, कपड़े खरीद के लाते हैं, पहनते हैं, मन उब गया, कपड़े खराब हो गया, आप फेंक देते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, और हमेशा आप कपड़े को 20 साल 25 साल पहन के नहीं फेंकते। कभी कभी कुछ कपड़े आपने लाया, एक ही बार पहना, एक बार धोया, कलर फेड हो गया, सिकुड़ गया, आपने फेंक दिया। चाइल्डहुड में ही सीधा ड्रेस को आपने डिस्पोज कर दिया। कभी कभी आप ऐसा कपड़ा खरीदते हैं, आपको बहुत पसंद है, बहुत पहनते हैं, पहन पहन के थक चुके हैं, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, सब रिश्तेदार फ्रेंड सबको पता चला, आप कहां पहनो इसको, बंद करके रखा पड़ा है, कहीं पहनने को नहीं मिला, बहुत पुराना कपड़ा, मन नहीं कर रहा है छोड़ने को, बहुत अच्छा कपड़ा है, प्रॉब्लम है कि आप कितना पहनो, बहुत स्ट्रांग है। कभी कभी कुछ लोग भी 100 साल 125 साल तक जी जाते हैं, जा ही नहीं रहे, घर वाले परेशान है कब जाएंगे, 25-30 साल से सोच रखे हैं, अब अगले साल तक शायद जाएंगे, अगले साल करते करते 25-30-40 साल हो गया, 70 साल से काउंट कर रहे हैं, 125 साल 120 साल हो गया, जा ही नहीं रहा है, वो उस कपड़े के तरह ना खराब हो रहा है, ना फट रहा है, और छोड़ने को मन भी नहीं करता। ऐसे ही है जीवन, ये कपड़े की तरह शरीर है, एक बार यूजलेस हो गया तो उसको डिस्पोज कर लेने का, कोई डे ऑफ जजमेंट नहीं है जिसके लिए आप बॉडी को सेव करके रखो जमीन में गाड़ के, डे ऑफ जजमेंट आएगा, आप बॉडी के साथ जाओगे, देयर इज नथिंग इटर्नल हेवन एंड इटर्नल हेल। अगर सुख भोगते हो दैट इज योर हेवन, अगर आपकी लाइफ में मिजरी है दैट्स योर हेल। एनिमल्स की लाइफ मिलेगा तो वो हेल है, किसी इंसान अच्छे घर में पैदा हो गए सुंदर शरीर के साथ, सुंदर विचार के साथ, किसी अच्छे मां बाप के घर में पैदा हो गए तो वो स्वर्ग है। तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हें फल मिलेगा, कोई परमानेंट हेवन और हेल का कोई कंसेप्ट नहीं। बॉडी खत्म, आदमी आत्मा निकल गई, इसका कोई वैल्यू नहीं, जितना देर तक बॉडी रखो उतना बीमार पड़ोगे। आजकल लोग डेड बॉडी को चूम लेते हैं, अब वो जिस भी कारण से करते हैं ये हाइजीनिकली ठीक नहीं है। और इंटरेस्टिंगली हिंदू ट्रेडिशन में, धर्मशास्त्रों में रिकमेंडेड है, अब पहले लोग करते थे, आज भी जो गांव में अनपढ़ लोगों को ज्यादा समझ रहता है, तो मरने के 4 घंटे के बाद कोई ऐसा कोई एक्सपल्स, कोई बहुत ज्यादा आपके लाइफ में कंपल्शन नहीं हो तो 4 घंटे के अंदर अंदर बॉडी को जला देना चाहिए, उसके बाद उसके अंदर बैक्टीरियाज पैदा होने लगेंगे और उसके आपके आसपास के घर शरीर लोगों को भी उससे बच के रहना चाहिए। और जो लोग बॉडी के आसपास होते हैं उनको अपने जब फ्यूनरल सर्विस हो जाए कपड़ों को बदलना चाहिए, साफ करना चाहिए, खुद अच्छी तरह नहाना धोना चाहिए। अगर व्यक्ति का डेथ घर के अंदर हुआ है तो मेक श्योर कि मोस्ट ऑफ आसपास की चीजों को साफ सुथरा करें, दोबारा क्लीन करें, और यज्ञ हवन वगैरह करके घर की शुद्धि करें। वो अफेक्शन जिसके साथ था वो आत्मा, वो तो चला गया है, ये तो बॉडी है, बॉडी से क्या अफेक्शन है, वो तो आप जितना देर तक रखोगे उतना स्मेल आने लगेगा, बदबू करने लगेगा, व्यक्तित्व आने लगेंगे। इसलिए इसको बेस्ट तरीका है कि आप इसको रेस्पेक्टफुली आप इसको डिस्पोज करें, ऐसा डिस्पोज करें कि एटमॉस्फेयर को खराब ना करे, गंदा स्मेल ना हो, बैक्टीरिया ना फैले, मिनिमम जगह ले। आजकल तो जगह की इतनी कमी है, जिस तरह के ग्रेवयार्ड बन रहे हैं तो एक एक देश में 25% तो ग्रेवयार्ड में चला जाएगा। बहुत ही साइंटिफिक वे ये है कि बॉडी को अग्नि में डाल दिया जाए। मोस्ट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज में ये लॉ बन गया है कि आपको अग्नि में जलानी पड़ेगी, जगह की कमी हो रही है, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम है। तो आपको ये समझना चाहिए कि आपके पूर्वज कितने समझदार थे, उनके पास भी जगह था, उनके पास भी आज से 1000, 2000, 5000 साल पहले जगह की क्या कमी थी, लोग तो थोड़े से ही थे। पर जो साइंटिफिक सोच है जिसके साथ आपके रिलीजन को उन्होंने अटैच किया था, उसी का ये परिणाम है। सो क्रिमेशन इन फायर इज द ओनली मीन्स दैट कैन क्विकली रिटर्न ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द डेड बॉडी इनटू द ओरिजिनल फॉर्म एंड ऑल सब्सटेंसेस ऑफ बॉडी विल गेट रिड्यूस्ड एंड विल एस्केप इन द एयर। बाकी एक्स्ट्रा अटैचमेंट दिखाना बेवकूफी है, बॉडी है, अब ये आपको बीमार ज्यादा करेगा इंस्टेड ऑफ की आपके अफेक्शन से। दूसरे टॉपिक पर आते हैं, यजुर्वेद का मंत्र है, ईशावास्य उपनिषद भी में भी आता है, ये 40वें अध्याय में मंत्र कहता है, वायुर अनिलम अमृतमथे इदम भस्मांतम शरीरम ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर क्रतो स्मर कृतम स्मर। इसका मीनिंग है, इन दिस मंत्र द माइंड इज एड्रेस्ड not the person, and it says that, oh mind, remember all that has been done by you, and oh mind, remember your own acts, because the breath air returns to the immortal air, the atmospheric air, and this body will be burned to ashes. Basmantam shariram, तुम्हारी एग्जिस्टेंस कब तक है, जब तक तुम्हारा शरीर राख में नहीं बदल जाता। मंत्र का सिंपल भाव है ये मन, क्योंकि आफ्टर ऑल हमारी पर्सनालिटी का जो कोर जो पावर है, पावर हाउस है, वो तो माइंड है, इसी से ही हम डिसीजन लेते हैं, अपना लाइफ को चलाते हैं। कि जब भी मौका मिले, रोज शाम को, हफ्ते में एक बार हो, महीने में एक बार हो, 6 महीने में हो, 1 साल में हो, 10 साल में हो, 50 साल में हो, एनिवर्सरी पर हो, कभी कभी टाइम निकाल के टाइमली रेट्रोस्पेक्टिव लुक दो, अपनी लाइफ को एक बार दोबारा देखो। इसको संस्कृत में कहते हैं सिंहावलोकन, पीछे मुड़ के देखो, क्या किया, क्या पाया, कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, किन किन लोगों को, चीजों को मैंने इकट्ठा किया, उसका कितना यूज है, कितना बेकार है, कहीं ऐसा नहीं तो आगे जाकर के कोई काम में नहीं आएगा। मरना तो अलग बात है, जब मैं बीमार पड़ा होऊंगा, फिजिकली कुछ कर नहीं सकता, तब ये चीजें मुझे काम आएंगे नहीं आएंगे। थोड़ा रेट्रोस्पेक्शन करो, किन चीजों को वैल्यू देते हो, क्या सचमुच वो वैल्यू देने लायक है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो वर्थलेस है कल। ये कभी कभी हमें सोचने की जरूरत है। कभी कभी हम रैंडमली सिर्फ कमाते हैं, मतलब बिना सोचे समझे कमाते हैं और इकट्ठा करते हैं, ये सोचे बिना कि इसका फ्यूचर में कुछ यूज है कि नहीं है। एक सुंदर श्लोक है, कहता है, धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, इज द रियलिटी ऑफ लाइफ, నారీ గృహద్వారి సఖా శ్మశానే దేహశ్చితాయాం పరలోక మార్గే ధర్మానుగో గచ్చతి జీవ ఏకః. జబ్ తుమ్ రిస్తా బనాతే హో తో యే సోచ్ లేనా, ధనాని భూమౌ పశవశ్చ గోష్ఠే, జబ్ మరోగే యే ధన్ ప్రాపర్టీ ల్యాండ్ హౌస్ అనిమల్స్, పహలే జమానే మే అనిమల్స్ ఆర్ వెరీ మచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాస్పరిటీ, హాతీ హే ఘోడా హే, ఆజకల్ పశు కే జగా ఆప్ లే లెంగే, కార్స్ హే, వో స్పోర్ట్స్ కార్ హే, వో కార్ హే, లగ్జూరియస్ కార్స్ హే, ట్రక్ హే, యే సబ్ పశు కే జగా లే లియా, యే సబ్ అప్నే అప్నే గోఠ్ మే మిలెంగే, ధన్ ట్రెజరీ మే హోగా, పహలే గాయ హాతీ ఘోడా అప్నే అప్నే ఉస్మే హోతే థే, ఆజకల్ ఆప్ కహెంగే తో కార్ వగరా గరాజ్ మే హీ రహే మిల్ జాయెంగే. నారీ గృహద్వారి, తుమ్హారీ పత్నీ చేంజ్ భీ కర్ సక్తే, వో పహలే థా కి జబ్ ఫ్యూనరల్ హోతా హే క్రిమేషన్ తో పత్నీ కో అలౌ నహీ కర్తే జానే కే లియే, క్యోంకి ఇమోషనల్ చీజ్ హే శ్మశాన్ మే, డరావనీ చీజ్ హోతే నా, స్కేరీ, తో అలౌ నహీ కర్తే, ఘర్ కి దర్వాజే తక్ వో ఆతీ హే, ఇస్కో పలట్ సక్తే హే స్వామీ, అగర్ హో తో ఫ్యూనరల్ సర్వీస్ వో ఫ్యూనరల్ హోమ్ తక్ జాయేగా. సఖా శ్మశానే, తుమ్హారే దోస్త్ హే, మిత్ర హే, కహాన్ తక్ జాయేంగే, ఫ్యూనరల్ హోమ్ తక్ జాయేంగే. దేహశ్చితాయాం పరలోక మార్గ, తుమ్హారా శరీర కహాన్ తక్ సాథ్ దేగా, వో చితా తక్, చితా సమజ్తే జో జహాన్ ఆగ్ జలాయా జాతా హే, జిస్మే బాడీ కో, ఆజకల్ జైసే ఎలక్ట్రికల్ వో చులా హే, తో వో చుల్లీ జో హే, तो एक ही चीज है जो तुम्हारे साथ जाएगा, वो है तुम्हारा धर्म, मतलब धर्म अधर्म दोनों जाएंगे, जो तुम्हारे द्वारा किया गया कर्म है उन कर्मों का सारा लेखा जोखा तुम्हारे साथ जाएगा, पर एक ही अगर गलत किया, गलत वो अधर्म है, वो तुम्हें आगे जाकर परेशान करेगा, वो तो शत्रु है तुम्हारा, तुम्हारे गलत किए हुए कर्मों का फल तो तुम्हारा शत्रु है, आगे परेशान करेगा, तुम्हें मजबूर करेगा, एनिमल लाइफ में जाओ, मिजरी में गुजरो, परेशानी में पड़ो, तुम्हारा जो दोस्त है, रियल दोस्त, जो इस जीवन में भी अगले जीवन में काम आएगा, कहता है धर्म, ये जो तुम्हारा धर्म है, धर्म मतलब जो वर्चुअस थिंग है, जो मेरिटियस थिंग है, तो अच्छी चीजें हम करते हैं लाइफ में, वही चीजें सिर्फ तुम्हें तुम्हारे साथ देगा, उसी को कल्टिवेट करो, उसके लिए सोचो किसको आप कितना टाइम दोगे, किसके लिए कितना आप अपना इन्वेस्ट कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं गलत चीज पर आप एक ऐसी चीज पर इन्वेस्ट, पूरी लाइफ इन्वेस्ट कर दिया, जो 10 साल के बाद उसका कोई यूज ही नहीं है, ये रेट्रोस्पेक्शन की जरूरत है. एक वो हिंदी में कहावत, एक किसी ने फ्रेज बनाया, श्मशान ऐसे लोगों की राख से भरा पड़ा है जो समझते थे कि दुनिया उनके बिना चल नहीं सकती, जो समझ नहीं सकते, उनकी अंग्रेजी में है, द क्रिमेशन द क्रिमिटोरियम इज फुल ऑफ द एशेस ऑफ दोज पीपल हु यूज्ड टू थिंक द वर्ल्ड कैन नॉट बी रन विदाउट मी. एक छोटी, एक बार एक साधु अपने शिष्यों के साथ, एक फिलोसफर सन्यासी अपने दोस्तों के फॉलोअर और शिष्यों के साथ जा रहे थे, रास्ते में एक ये क्रिमेशन फील्ड आया, श्मशान आया, वहां कुछ खोपड़ियां पड़ी हुई थी, तो बाई चांस वो साधु जी के पैर में एक खोपड़ी लगी, तो उसने इस खोपड़ी को उठाया, उठा करके बोला, सॉरी, माफ करना, माफ करना, पैर लग गया, मैंने सुनाया होगा बहुत बार, माफ करना, ठीक है. तो शिष्यों ने कहा कि चलो ठीक है, आप बड़े अच्छे आदमी हो, खोपड़ी में भी पैर लग गया, आपने माफ मांगी, बार बार क्यों कह रहे हो, माफ कर दो माफ कर दो। तुम्हें पता है ये किसकी खोपड़ी है? ये जमींदार की खोपड़ी है। जमींदार समझते हैं, लैंडलॉर्ड, जो पूरे 10-20 विलेज का जो लॉर्ड होता है। बड़े अकड़ में रहता था, मेरा तो पैर लग गया, अगर जिंदा होता मेरे मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल जाता जो उसको पसंद नहीं तो मेरे जीभ काट देता। ये तो पैर लगाए पता नहीं मेरे क्या कर डालता, माफी तो मांगना बनता है। तो ठीक है, माफी मांग लो, माफ कर दो। वो और उस खोपड़ी को उसने फेंका नहीं, लेके अपने झोले में डाला और गया। शिष्यों को पता था साधु जी हमारे थोड़े सनकी हैं, ज्यादातर बहुत ज्ञानी लोग सनकी टाइप का बिहेव करते हैं, मतलब वो सनकी नहीं होते हैं, वो तो ठीक होते हैं, पब्लिक को लगती है वो सनकी है, मतलब पब्लिक की एक अपना नेचर होता है ना, जो पब्लिक की तरह बिहेव ना करे वो सब सनकी होते हैं, सब पागल होते हैं। तो अपने झोले में डाला और काम करके घर गया। घर जाकर के वो झोले से वो खोपड़ी निकाल के अपने बेडरूम में सर के पास रखा। जब सोने गया बोले माफ कर देना, तो पत्नी ने देखा पूछा ये क्या है, बोले पता है किसकी खोपड़ी है, ये जमींदार की खोपड़ी है, बहुत अकड़ वाला था, मेरा पैर लग गया था इसमें। चलो ठीक है, वैसे पत्नी को पहले से ही पता है कि आदमी तो वैसे ही सनकी है, चलो ठीक है सरी बोल दिया, कोई बात नहीं। बच्चों ने भी पूछा पर इसको घर में क्यों लेकर आया, नहीं नहीं मुझे अपने बेडरूम में इसको रखना है। रोज उससे माफी मांगे जी, सुबह घर से बाहर निकले, घर के अंदर आए, वो खोपड़ी को पकड़ के माफी मांगे, माफ कर दो माफ कर दो। बच्चे पत्नी भी परेशान हो गए, बोले ये क्या तमाशा कर रखे हो, घर में बच्चे हैं वो हैं, खोपड़ी रख के कहते हो माफ कर दो माफ कर दो, ना तुम्हें पता है ये किसकी खोपड़ी है, ना ये भी रोज सुनाते हो, जमींदार की खोपड़ी है ये भी सुनाते हो। अरे इसीलिए तो सुनाता हूं, जमींदार की खोपड़ी है, जब जिंदा था उसके सामने अगर कुछ गलत बोल भी तो वो जीभ काट देता था। आज इस लायक नहीं है कि मैं महीनों भर से माफी मांग मांग के थक चुका हूं कि वो मुझे माफ भी कर दे, इसीलिए तो रखा हूं कि मुझे रोज याद दिलाए कि मेरी भी एक दिन ऐसी हालत होगी, कोई माफी मांग रहा भी होगा मैं देने काबिल नहीं रहूंगा। तो ये मुझे याद तो दिलाए दिलाता है कि मैं अपने लाइफ को कैसे जीऊं। देवियों सज्जनों, यही जीवन की सच्चाई है। हर सोल की आत्मा की अपनी यात्रा है। आप एक टेम्परेरी पीरियड के लिए आए हैं, एक टेम्परेरी बॉडी के साथ, इसको यूज करें एंजॉय करें, पर इस एंजॉयमेंट का जो साइड इफेक्ट होता है ईगो अटैचमेंट, इस पर जरूर ध्यान दें। कोई नहीं है, ना पति ना पत्नी ना बच्चे ना संसार, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है। जाना तो आपको अकेले है, और किसके साथ, अपने कर्मों के साथ जाना है, कर्म तुम्हारा होगा और कोई नहीं होगा। सब जब तक जिंदा हो उनकी भी अपनी सीमा है, कहां तक आपको हेल्प करेंगे। अभी आपने श्लोक में सुना, आत्मा हमेशा एक जगह है, शरीर बदलता है, वो शरीर के साथ ही एंजॉय करो पर अटैच्ड मत करो। जब आत्मा निकलती है शरीर, डेथ किसको कहते हैं, शरीर से आत्मा का निकल जाने का नाम डेथ है। और आत्मा अकेले नहीं निकलती है ना, आत्मा जाती है माइंड के साथ, ये माइंड उसका व्हीकल है, वाहन है। और वो माइंड कौन, द स्टोर हाउस ऑफ ऑल दोज एक्सपीरियंसेस वी हैव एक्सपीरियंस्ड और वी हैव डन। जो कुछ हमने किया है, एक्सपीरियंस किया है, उन सब का जो मेमोरी है उस स्टोर हाउस में पड़ा है माइंड के। और वो माइंड जाता है आत्मा के साथ, और वही माइंड से ही डिसाइड होता है कि आगे जाकर मुझे कैसा मिलेगा, कैसा शरीर मिलेगा, व्हाट टाइप ऑफ बॉडी आई एम गोइंग टू गेट, व्हाट टाइप ऑफ एक्सपीरियंस आई एम गोइंग टू गेट, एंड व्हाट विल बी द लाइफ स्पैन ऑफ माई नेक्स्ट लाइफ. ये तीनों डिसाइडेड होता है, मैंने इस जीवन में क्या क्या किया है, उन करने का जो कर्मों का जो संस्कार है वो सब मेरे माइंड में रहता है. आप पुराणों में कहानी सुनते हैं ना, मैं कंक्लूड करूंगा और एक मिनट लेके, पुराणों में आप कहानी सुनते हैं और सब पढ़ते हैं यमराज की. यमराज कौन है? द लॉर्ड ऑफ डेथ, मरने की देवता. कहते हैं यमराज प्राण ले जाता है. तो यमराज का एक मुनीब है, मैनेजर है, जो सारा बही खाता हिसाब रखता है, अकाउंटेंट है, सब हिसाब रखता है. तो उसका नाम है चित्रगुप्त. बहुत लोगों ने स्टोरी सुनी होगी. वो चित्रगुप्त का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करें, चित्र मतलब पिक्चर, गुप्त मतलब हिडन, छुपा हुआ, हिडन पिक्चर. एंड व्हाट इज दैट हिडन पिक्चर, व्हाट इज दैट चित्रगुप्त? इट्स योर माइंड. यमराज किसी चित्रगुप्त नाम का मुनीब से नहीं पूछता. वो आपका माइंड जो एक चिप की तरह है, जो फ्लैश ड्राइव की तरह है, जो ड्राइव की तरह है, बस कंप्यूटर में लगाओ, प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है. जितना भी डाटा निकालना है सब निकाल लो, सब डाटा उस फ्लैश ड्राइव में ड्राइव के अंदर है. योर माइंड इज योर ड्राइव, दैट इज चित्रगुप्त. वो सीडी की तरह आप उसमें भजन लगाओ, गाना लगाओ, मूवी देखो, अपनी पढ़ाई का कुछ भी जो आपने डाला होगा वही दिखेगा. और जब आपकी और तभी वो दिखाई देगा जब आप उसको देखना चाहें कंप्यूटर में, प्रॉपर वे में. इसी तरह आपके माइंड में सब डोरमेंट स्टेज में, इनएक्टिव मोड में आपकी सारी मेमोरीज पड़े हुए हैं. जहां आत्मा बाहर निकलती है, जैसा भी ईश्वर की सिस्टम में उसको जिस तरह का भोगना है, वो माइंड की उस डाटा से एनालाइज करके ईश्वर आपको वैसा ही जन्म, ऐसा ही भोग जो आज आपको मिला है वो उसी के कारण मिला हुआ है. ईश्वर कोई अपनी मर्जी से रैंडमली नहीं करता, वो उस सिस्टम को फॉलो कर ही करता है. इसलिए ऑलवेज रिमेंबर कि आप शरीर बॉडी नहीं हो, आप माइंड नहीं हो. You are that which knows the body, which knows your mind, which knows your senses. उसको realize करने की जरूरत है. The moment you started to realize yourself, who are you, you definitely get rid of that cycle of death and birth. इसीलिए वो गीता में कहता है, उद्धरेद आत्मनात्मानम आत्मानम अवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः. तुम तुम्हें बचा सकते हो, तुम ही हो जो तुम्हें कोई बचा सकता है, बचा सकते हो. तुम ही हो जो तुम्हारी बर्बादी कर सकते हो, बाकी तो सिर्फ साथ देते हैं. मैं अपना अगर मेरा दुनिया में सबसे बड़ा कोई फ्रेंड है वो मैं हूं, मेरा अगर कोई सबसे बड़ा एनिमी है, दुश्मन है, वो मैं हूं. जिस दिन मैं अपना दुश्मन बन जाऊं तो दुनिया के बहुत लोग मिल जाएंगे जो मेरे साथ, मेरी बर्बादी के साथ देने के लिए. और जिस दिन मैं अपना दोस्त बन जाऊं तो दुनिया में भी बहुत लोग मिल जाएंगे जो मेरी आबादी में साथ देने के लिए. दुनिया तो साथ देता है, डायरेक्ट कॉज नहीं होता है, डायरेक्ट तो मैं ही होता हूं. तो इसी विचार के साथ हमने 16 संस्कारों के का जो अंतिम है, अंतिम संस्कार के बारे में डिस्कशन किया. अपने लाइफ को एंजॉय करें, हर तरह से एंजॉय करें, अंडरस्टैंडिंग के साथ, स्मार्टनेस के साथ, अगले जन्म की भी तैयारी बना के रखें. इन्हीं भावों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद. ओम शांति.